ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तपने तुम्हारी, भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की, आज भी भर रहे झोली तेरे प्यार की।
ओम शांति। एक बार फिर से बोले ओम शांति। बाप दादा, हम बच्चों को संपूर्णता की मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं और हर व्यक्ति का कोई न कोई रोल मॉडल होता है, अर्थात अंदर में हर व्यक्ति के रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, इस समान बनना है। लौकिक में भी दुनिया में होते हैं जिनके लिए मनुष्य लक्ष्य रखते हैं, लेकिन हम बच्चों के सामने तो बाप दादा ने जो लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है, हमें क्या बनना है, कैसा बनना है, किसके समान बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा, वो तो ठीक है, वो तो इन आंखों से देखने में नहीं आते, लक्ष्य है बुद्धि में जरूर, लेकिन यहां पर किसके समान बन के हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं, वो बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है। अभी तक पूरे सृष्टि चक्र में जो नंबर वन आत्मा रही है साकार ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके जो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हम सबका भी वही लक्ष्य है, क्योंकि बाबा तो सम्मुख दिखता था। हमें याद है कि बाबा हमेशा कहते थे, अभी भी हम सब जानते हैं कौन सा गायन है जिसके लिए बाबा कहते हैं कि सदा बुद्धि में रहे अंत मते सो गति का। हमारा सारा पुरुषार्थ ही उस एक क्षण के लिए हो रहा है जिस समय हम संपूर्ण बनेंगे, इस देह का त्याग करेंगे, अंत में जो हमारी स्थिति होगी वैसी ही हमारी गति होगी, वैसा ही जन्म होगा, वैसा ही जन्म जन्मांतर के लिए हमारा भाग्य नोंद जाएगा। इसीलिए हम सब का पुरुषार्थ हो ही रहा है उस एक क्षण के लिए, और बाबा को भी सदा बुद्धि में यही रहता था। हमें याद आता है कि बाबा से जब भी मिलते थे, बस बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा देखते थे, दृष्टि दी और बाबा के हाथ फैल जाते, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, ऐसे करके बाबा के हाथ जैसे फैल जाते थे और हम सब चुंबक की तरह आकर्षित होके बाबा की बाहों में समा जाते थे। ऐसा कैसे होता था, और ये तो शुरू में होता था, यानी कि जब हम 1961-62 में ज्ञान में आए, लेकिन धीरे 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 बाबा जैसे अव्यक्त होते जा रहे थे, कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो बाबा के नैनों के अंदर बस बाबा जरा सा यूं दृष्टि देते थे थोड़ा सा, और जब बाबा की बाहों में भी आते थे तो हम तुरंत ही सब विदेही अशरीरी हो जाते थे। अभी तो अशरीरी होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही बाबा की बाहों में आए एकदम देह का भान भूल जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पार्टी होती थी एक के बाद एक, बाबा से सब मिलते थे, बाबा ऐसे थपथपाते थे, हाँ बच्चे आओ नीचे आओ आओ, और फिर जैसे कोई ध्यान में नहीं जाते थे, कोई साक्षात्कार नहीं होता था, लेकिन एकदम अशरीरी विदेही हो जाते, देह का भान बिल्कुल पुरुष स्त्री बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो देह के भान से परे। फिर बाबा उतार करके भूमि टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और फिर एक बच्चा जाता था, फिर दूसरा आता था, इस तरह सब पार्टी वाले मिलते थे। तो बाबा भी साधारण, सबने जीवन कहानी बाबा की पढ़ी होगी, सुनी होगी, बाबा भी घर गृहस्थ में रहने वाला, हीरे जवाहरात का व्यापारी, बच्चे वाला, सब कुछ था, लेकिन इतने कम वर्ष में बाबा ने संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। कितने वर्ष में देखा, सोचा है कभी कितने वर्ष में बाबा कर्मातीत हो गए? केवल 32-33 वर्ष में, 1936-37 में ज्ञान लिया, 1969 जनवरी में तो बाबा संपूर्ण कर्मातीत होके चले गए, सिर्फ 32 साल में। पिछले 63 जन्मों के सारे विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर लिया, कर्मातीत अवस्था को पा लिया। ऐसा क्या था बाबा के पुरुषार्थ में, उसी को ही आज हम लोग आपस में थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो एक तो ये हम सब ने सुना है, जब बाबा को ज्ञान हुआ बस मैं आत्मा हूं, तो एक तो होता है जानना, एक होता है उसके अभ्यास में लग जाना। और हम सब ने सुना है बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया एक एक डायरी में, बस मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मला निर्मल शांता दादी, और नारायण लड़का। तो व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, पत्नी में, बच्चों में, संबंधियों में, इन सब में। तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया बिल्कुल बार बार कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो एक तो हम अपने से पूछें कि हम भी उस मार्ग के राही हैं कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के, तो मैंने कितना पक्का किया है ये, चाहे लिख कर करें, चाहे अमृत वेले उठ के करें, चाहे जिस भी आत्मा को देखें, वो देह को न देखें, उस आत्मा को ही देखें। तो पक्का करने का भाव ये है, जानते बुद्धि से तो जान गए हम सब आत्मा है, इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन बाबा ने जो पक्का किया, तो एक तो हमें, अगर हम भी चाहते हैं कि हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाए, तो एक तो ये पक्का करना पड़ेगा लिख लिख के। और उसकी निशानी क्या है, कोई भी चीज होती है, हर एक चीज की निशानी होती है कि हाँ ये तुमने ये पुरुषार्थ किया, उसके द्वारा ये प्राप्त किया। उसकी निशानी यही है कि अगर हमने अपने को ये पक्का किया होगा, मैं आत्मा हूं, इस देह के द्वारा कर्म कर रही हूं, इन नैनों के द्वारा देख रही हूं, तो जैसे ही हम जिन आत्माओं को देखेंगे, जिनको दृष्टि देंगे, बस वो आत्माएं भी सब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, विदेही हो जाएंगे। तो ये हमें चेक करते चलना है कि हमारे व्यवहार से, हमारे नैन चैन से, हमारे कर्मों से हम लोगों को देह भान में लाते हैं या देह भान से न्यारा करते हैं। तो जितना जितना देह भान से न्यारा होते जाएंगे, उतना उतना दूसरों को भी हम करते चलेंगे, इसका मतलब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते चले जाते हैं। दूसरा बाबा ने और क्या किया, सुना होगा ना, दो डायरी, एक तो ये डायरी, दूसरी डायरी में क्या करते थे बाबा, जो बाबा ने हम बच्चों को भी पिछले 2-3 वर्षों से विशेष कार्य दिया हुआ है। कौन सा कार्य दिया है? बाबा ने कहा है दरबार लगाओ, रोज रात को सोने से पहले दरबार लगाओ। किनकी दरबार लगाओ? अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। तो कैसे लगाते हैं दरबार? देखो बाबा ने कैसे करा, क्योंकि चलो तो बात हो रही थी। बाबा कहता है कि अपने सूक्ष्म इन कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, मन की, बुद्धि, संस्कारों की। कैसे लगाई जाती है दरबार? तो हम लोगों को एक पुराने भाई दादा आनंद किशोर जी होते थे, उन्होंने बाबा के हाथ का लिखा हुआ पत्र एक दिया था, जो शुरू में ही बाबा ने 1936 में ही अपने मन को पत्र लिखा, बुद्धि को पत्र लिखा। कैसे पत्र लिखते हैं आप गौर से सुनना, क्योंकि हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या करें भाई, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, और हम चाहते तो नहीं ये करना हो जाता है, हम गुस्सा करना नहीं चाहते आ जाता है, मन को हम दोष दे देते हैं। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया हे मन कि मैं आत्मा राजा कमजोर हो गया, तू मंत्री ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तू जहां जहां जाता था मैं तेरे पीछे पीछे आता था, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं तू मेरा मंत्री है, मैं राजा हूं। इस तरह कह के बाबा ने मंत्री मेरा अंदर में है, मैं राजा हूं, इस स्वमान में बाबा ने अपने को स्थित किया, मैं आत्मा राजा हूं, मन जो है मेरा मंत्री है, उसे मेरे कहने पर चलना है। तो बाबा ने ये पत्र लिखा। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा कि हे बुद्धि, मैं तुझे भी कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा हूं, मन मंत्री है, बुद्धि अलग सेनापति है, जैसे संस्कार सैनिक है, तो बुद्धि तुम, मन और बुद्धि तुम दोनों आगे चलते रहे, और जैसा जैसा कहते रहे मैं आत्मा राजा कमजोर हो गया था इसलिए मैं वैसा करता चला गया, लेकिन अब मैं तुझे भी बता देता हूं हे बुद्धि कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे भी मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। इस तरह बाबा ने पत्र लिख के ये पक्का किया, अपने सम्मान में बाबा स्थित हो करके मन और बुद्धि को ऑर्डर दिया। होता क्या है किसी का भी ऑर्डर तब मानते हैं, कई बार हम कहते हैं कि क्या करें, हम फलानी शक्ति को ऑर्डर तो देते हैं समय पर कि सहन शक्ति आओ या समाने की शक्ति आओ, लेकिन आते नहीं। तो वो क्यों नहीं आते? क्योंकि हम अपनी सीट पर स्थित होकर के ऑर्डर नहीं देते। कोई ऑफिसर है, जब अपनी सीट पर बैठा हुआ होगा उसका ऑर्डर सब मानेंगे, लेकिन जब मानो वो रिटायर हो गया या दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया या वहां पावर में नहीं है, तो जो भी ऑर्डर करेगा उसे नहीं मानेंगे लोग। ऐसे ही हम अपने समान की सीट पर जब स्थित नहीं होते हैं, और तब हम कहते हैं बाबा बस कोई परिस्थिति आई, ओह मुझे सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति, सामना करने की, उस समय वो शक्तियां नहीं आती। होती है, लेकिन समय पर उस शक्ति का सहयोग क्यों नहीं मिलता, जैसा गायन है कर्ण का भी महाभारत का भी, समय पर शक्ति का सहयोग नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वमान में स्थित होकर नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रोज अगर हम रात को दरबार लगाएंगे सोने से पहले, मन बुद्धि का पूरा चार्ट देखेंगे, तो धीरे धीरे इतना अभ्यास हो जाएगा कि फिर जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे तुरंत ही समय पर वो शक्ति हाजिर हो जाएगी, हमारा कहना मानेगी। तो एक बाबा ने ये पुरुषार्थ पक्का किया, और इस कारण से क्या हुआ है? हमारे भारतीय संस्कृति में भी इसीलिए मन की बात को बहुत महत्व दिया गया है। जो बाबा ने भी कहा है ना, हम बच्चों को होमवर्क दिया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन के लिए कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गीता में भी मन के ही लिए कहा है मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो सारा खेल ही हमारा मन का है, और ये जिस जब हम मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बस जैसे कि हमारे लिए पूरा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, कर्मातीत अवस्था की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा भी ये हम देखते थे कि पहले बाबा हम लोगों को बहुत समय देता था, बाबा के सामने जाते थे, हम सोचते थे बाबा को सुनाएंगे, अब बाबा को समाचार सुनाते थे सेवा का, अपने पुरुषार्थ का, बाबा सुनता था फिर उसका समाधान देता था। 10 मिनट 15 20 मिनट 25 मिनट तक 30 मिनट तक भी बैठते थे, बाबा समय देते थे, सुनते थे, सुनने के बाद समाधान। लेकिन हम देखते थे धीरे 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 जितना बाबा अव्यक्त स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो सब तरफ से जैसे समेटते चले जा रहे थे, और लास्ट में 1967-68 में तो हमने देखा, कई बार मिले, और 1969 में 17 और 18 जनवरी की रात को बाबा अव्यक्त हुए, और हम 17 जनवरी की सुबह यहाँ आ गए थे। तो 17 और 18 जनवरी को तो दो दिन में देखा, बिल्कुल बाबा तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के निकट था। तो क्या देखा कि जब हम लोग बाबा के सम्मुख जाते थे, बाद में 1966 में 67 में और समय गुजरता जा रहा था, बाबा के सम्मुख गए, थोड़े से दो चार लाइन बोली जो हम सुनाना चाहते थे, एक दो लाइन, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, एक दो लाइन बोलते ही कहते थे बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है, अभी तो ये बहुत बतानी है बात, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया और ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। लेकिन कुछ दो चार लाइन बाबा सुनता था, और इस तरीके से बाबा एकदम सुनते ही मन के भाव को जान जाता था। लेकिन 17 और 18 जनवरी को तो बड़ा ही वंडर देखा हमने, बहुत आश्चर्य, बाबा के सम्मुख गए, बहुत दूर में हम पोस्टेड से इंजीनियरिंग पास करने के बाद आसाम में वहां पर सेवारत थे, तो वहां से आए, वहां बाबा का सेंटर चलाते थे, वहां सेवाएं होती हो रही थी कि बाबा से ये पूछेंगे ये करेंगे ये, बस लगभग 6-7 बार दो दिन में मिले हम 17 और 18 जनवरी को बाबा से। तो बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने जरा यूं दृष्टि दी, हमें एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और हर बार बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी कि पहले बाबा शुरू में 5-7 साल पहले सारा सुनता था, समय देता था, फिर धीरे धीरे बहुत कम 2-4 लाइन सुन के फिर समाधान देता था, लेकिन अंत में जब संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के नजदीक था, एक भी अक्षर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बस दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। ये है मन के भावों को, मन जीते जगत जीत। जब एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, तो कई बार जब ऐसा हुआ, बाद में हमने बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी जी होते थे उनसे पूछा, दीदी ये कैसे होता है, बाबा तुरंत मन के भाव को जान के बता देता है, तो बड़ा अच्छा दीदी ने जवाब दिया कि देखो जैसे पानी होता है ना, पानी अगर साफ होगा बिल्कुल, हम अपनी छवि भी उसमें देख सकते हैं, अपना शक्ल भी, और बिल्कुल पानी निर्मल है, कोई उसमें लहरें नहीं है। लेकिन अगर पानी में एक छोटा सा पत्थर भी फेंक दो, लहरें पैदा होंगी, तो अपनी छवि हमें स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही जब हमारे मन के अंदर कोई भी संकल्पों की लहरें नहीं होती हैं, अपना मन के संकल्प में, तो हम दूसरे के मन के संकल्प को तुरंत ही पढ़ सकते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर भी कोई संकल्प चल रहे होंगे, तो हम दूसरे के संकल्पों को नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए अभी आवश्यकता यह है कि हमारे हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या होते जाए, इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए। कोई दुनियावी लौकिक स्थूल की बात नहीं, इवन ये भी इच्छा, यहाँ तक कि हमारी ये सेवा हो, हमारे फलाने संबंधी का बुद्धि का ताला खुल जाए, वो ज्ञान में आ जाए, नहीं। बाबा कहते ये भी इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि सारा संसार ही हमारे लिए हमारी रचना है, हम उनके इष्ट देव हैं। ऐसा समय आएगा जब अंत में ये सब आत्माएं आएंगी हमारे सम्मुख, और बिना उनके एक शब्द बोले भी हमें उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे मैं बताया आपको, बाबा के सम्मुख गए और बस अंदर क्या चल रहा है बाबा ने तुरंत बता के और उन प्रश्नों का तुरंत समाधान कर दिया। 18 जनवरी की रात्रि को ऐसे ही बाबा क्लास करा रहे थे, अपनी अंतिम क्लास, सामने हम भी बैठे हुए थे, मधुबन का हिस्ट्री हॉल आप सबने देखा है। बाबा आए, क्लास करा रहे थे, क्लास कराते सुनते सुनते हमारे मन में एक संकल्प आया, क्या कि बस बाबा मुरली चला रहे हैं, बाबा कुछ हमारे लिए भी व्यक्तिगत कुछ बोले बाबा नाम लेके। बस जैसे ही भक्ति में गए ना, भक्त के मन में संकल्प आया, और जो भक्त के इष्ट देव होते हैं तुरंत उसको समाधान कर देते थे। तो बस जैसे ही मन में संकल्प आया, बाबा तो कर्मातीत अवस्था को था, बस बाबा तक संकल्प पहुंचा होगा और तुरंत ही कुछ सेकंड में ही बाबा ने नाम लेके और कुछ महावाक्य उच्चार दिए, देखो ये बच्चा है, बहुत अच्छा है, ये सेवा करता है, आदि आदि। वो आज तक भी टेप के अंदर भरे हैं। और मुख्य बात यह है कि मन में संकल्प हमारे आया, बस संकल्प आने की देर, और बाबा ने उन संकल्पों को पूर्ण कर दिया। ऐसा पार्ट जो हमारे हमने देखा, यही पार्ट हम सब एक एक बच्चे के द्वारा अंत में चलना है। बहुत आत्माएं अपनी इच्छा लेकर के आएगी, कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी, कोई अनेक प्रकार के। इसीलिए बाबा कहता है अभी कौन सा योग चाहिए, जिसके लिए आपकी भट्टी भी चल रही है, क्या नाम देता है बाबा इस योग को? ज्वालामुखी योग। ज्वाला यानी अग्नि, ज्वालामुखी योग। क्यों? क्योंकि अग्नि में ना कोई भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसे हमारा योग भी ऐसा अग्नि समान तेजोमय योग हो, जो बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख का अनुभव करके जाए। ऐसा उसका रूप हम परिवर्तन कर दें। जैसे हमने देखा मन में अनेक प्रश्न होते थे, बाबा के सम्मुख गए सब प्रश्नों का समाधान हो जाता था। अभी यही एक एक बात बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, और हमारे द्वारा अंत में ये पार्ट चलना है। लेकिन कब ये पार्ट चलेगा? जब हमारा ये तन और मन बिल्कुल शुद्ध होगा, मन के अंदर कोई संकल्पों की लहरें नहीं होंगी, और तन भी संपूर्ण पवित्र, जो बाबा हम बच्चों को हमेशा कहता है। तो इस रीति से ये 18 जनवरी को एक तो ये देखा, और क्या देखा साथ में, बाबा कहता है, हम देखते थे बाबा इतना उम्र 93 इयर्स आयु थी, 93 साल की। कई बार बाबा को खांसी भी काफी आती थी। बाबा हंसी में कहता था कि भाई मैं शिव बाबा से कहता हूँ, बाबा ये जो मेरी सखी है ना, इस सखी से मेरा पीछा छुटाओ, ये सखी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मेरे साथ साथ हमेशा रहती है, मैं इससे पीछा छोड़ना चाहता हूँ। कौन सी सखी? खांसी, बाबा कहता था। तो शिव बाबा का क्या जवाब होता था? शिव बाबा कहता था, बच्चे ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो ब्रह्मा बाबा कहता था, बाबा आपने मेरे तन का आधार लिया है तो कुछ तो कंसेशन करो ना, इतना सेवा आप इससे लेते हो। तो बाबा कहता, नहीं देखो, अगर मैं तुम्हारे से कुछ कंसेशन करूंगा, मेरे तो सारे बच्चे हैं, इतना ब्राह्मण परिवार, इतना सारी दुनिया के, तो हरेक के साथ मुझे करना पड़ेगा। मैं तो देखो तुम्हें इसका भाड़ा देता हूँ, तुम्हारे शरीर का आधार लिया है, भाड़ा देता हूँ, लेकिन जो कर्म तुमने किए, कर्मों का हिसाब तो तुम्हें ही चुकतू करना पड़ेगा। तो इस तरह कोई भी जो अभी हमने 63 जन्मों में कर्म किए हैं, उन कर्मों का हिसाब तो हमें चुकतू करना ही है। लेकिन बाबा कैसे चुकतू करता था? बड़ी न्यारी विधि थी। कई बार बाबा को खांसी आती थी, खांसी आते आते आंख भी गीली जैसी हो जाती थी। हम लोगों को दिल में होता था कुछ कि अरे बाबा को तकलीफ हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा फिर से ना एकदम भूल के, बच्चे देखो ये खांसी है, बाबा के पुराने हिसाब किताब है, अब बाबा जाके देखो हिस्ट्री हॉल में, वहाँ कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र था, देखो बच्चे अब बाबा जाके फिर से ये बनेगा, बस ये तो पुराना शरीर है, थोड़ा हिसाब किताब है, ये चुकतू करके अब बाबा फिर से ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। बच्चे खुशी में क्या करना चाहिए? खग्गिया मारनी चाहिए खुशी में। फिर बाबा पूछता था कई बार, है एक बार बाबा ने पूछा, ऐसे सब बैठे थे, बच्चे मालूम है खग्गिया कैसे मारते हैं, खग्गिया क्या होते हैं? तो बच्चों ने बोला, नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे नहीं, देखो बाबा तुम्हें दिखाता है, ऐसे बाबा ने ना कैसे होते हैं खुशी में ना खग्गिया, बस ओह कल जाके मैं ऐसा बनूंगा, ऐसे बाबा खुशी में ऐसा चेहरा। एक क्षण पहले बाबा को इतनी खांसी आ रही थी, खांसी आते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा जैसे उसको भूल करके तुरंत ही बस कल जा बाबा जाके ओ ऐसा बनेगा, वो नई दुनिया, नया शरीर, ओ बच्चे देखो कैसा विष्णु कृष्ण, तुम बच्चे भी सब ऐसे बनने वाले हो, कैसी दुनिया होगी। और वो पुरानी खांसी, पुराना देह का रोग और ये भोगना सब बिल्कुल भूल करके विस्मृति होके बाबा नई दुनिया के में जैसे लहराने लगता था। तो आज हम भी ये अपने से पूछे कि कभी कोई शरीर के कर्मों का हिसाब होता है अगर, तो वो मेरी स्थिति को तो नहीं बिगाड़ता, बस उसको भूल के हम अपने नई दुनिया। इसीलिए बाबा ने 5 उसका स्थिति का अभ्यास कराया, कभी अशरीरी फरिश्ता, कभी देवता समान आदि आदि, क्यों? और इसीलिए मन जीते जगत जीत, मन को हम जब चाहें जहां वहां लगा सके, ये एक है जो हम जिस समय चाहें उस समय अपनी स्थिति को वैसा बना लें। और बाबा में क्या देखा, जितना बाबा कर्मातीत अपना एक एक जो बाबा ने कहा है ना, समय और संकल्प, ये दोनों बिल्कुल वेस्ट नहीं करने, तो बाबा उसका उदाहरण था। समय जरा भी नहीं, पार्टी को जैसे टाइम दिया जाता था भाई 10 बजे ये बंबई पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बेंगलोर पार्टी, और 11 बजे पंजाब का पार्टी, आदि आदि ऐसे पार्टियां आते थे, मिलते थे, बाबा से मिलने का टाइम फिक्स होता था। बस बाबा बैठे हैं और पार्टी एक मिलके गई, मानो 10 मिनट पहले चली गई, पूरा हो गया पार्टी। तब पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां तो होती नहीं थी, बीच में 5-7 मिनट का टाइम मिला, बस बाबा एकदम देह से न्यारा अशरीरी। पता कैसे चलता था? दूसरी पार्टी जब आती थी 10:30 बजे जैसे, बस बाबा बैठा है, आंख खुली हुई है, बस जैसे देह यहाँ है, बुद्धि से बाबा देह से न्यारा। ब्राह्मणी आती थी, बाबा बाबा, तो जैसे बाबा का तो कई बार बाबा को जर्क सारा, जैसे बाबा देह में आता था, फिर देखा हाँ बच्ची अच्छा आ गए पार्टी लेके, और फिर सब बैठते थे, फिर बाबा से सब मिलते थे। तो जो बाबा कहता है हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, एक सेकंड में देह में आना, अपना पार्ट बजाना, तुरंत ही देह से न्यारे होकर के फिर चले जाना, फिर बाबा के साथ और सूक्ष्म वतन में या परम धाम में। जैसे हम अपनी बुद्धि को जहां जिस समय जितना समय के लिए लगाना चाहे, ये प्रैक्टिकल बाबा इसका स्वरूप था। बस बाबा आए पार्ट बजाए, फिर थोड़ा भी समय मिला 5 मिनट इसी को ही, जैसे ना समय का संचालन कैसे हम हर एक एक समय को सफल करें, ये बाबा का प्रैक्टिकल ये देखने में आता था। और क्या होता था जब बाबा से और मिलते थे, हाँ बाबा की मैं बात बता रहा था कि अंतिम 18 जनवरी को बाबा ऐसे ही मुरली चला रहे थे। वैसे बाबा को कई बार खांसी आती थी, लेकिन आप 18 जनवरी की मुरली सुनो, बाबा को एक बार भी जैसे मुरली में खांसी नहीं आई, पूरा जैसे बाबा ने इतने फ्लॉलेस होके इतने शक्तिशाली रूप से वो मुरली चलाई। और वो इस बात का प्रतीक है कि जब शरीर का कर्म भोग जो है ना, उसके ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेता है, तो फिर संपूर्ण रीति से ये जो कोई भी देह की भोगना है, इस भोगना के ऊपर हमारी विजय हो जाती है। बड़ी दादी को भी हम लोग देखते थे, बट डॉक्टर आता था कहता था दादी प्रकाशमणि जी को कि दादी आपको तो इसमें बड़ा दर्द हो रहा होगा शरीर में, तो दादी कहती थी नहीं मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा है। नहीं नहीं दादी, आप ऐसे ही हमको बहलाने के लिए कह रहे हो, इसमें तो बहुत दर्द होता है, पेशेंट कराता है। तो दादी कहती है नहीं मुझे तो जरा भी दर्द होता, अगर होता भी है शुरू में तो बस मैं तो देह से न्यारी होकर के बाबा की गोद में चले जाते हूँ, बाबा बस मैं इससे न्यारी हूँ, फिर देह को कुछ अगर होता भी है उसकी भासना उसकी भोगना शरीर में हमें नहीं लगती, दर्द होगा लेकिन दर्द की अनुभूति नहीं होगी, अगर महसूसता नहीं होगी। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगाता है, काटा छाटी करता है, खून निकलेगा, सब कुछ होगा लेकिन दर्द की महसूसता नहीं होगी, कोई क्लोरोफॉर्म का कोई जो इंजेक्शन दिया होगा जगह, क्योंकि उस समय सुन्न हो जाता है शरीर, देह से न्यारा हो गए, वो तो स्थूल चीज है, लेकिन अगर हमें ध्यान से न्यारा होने की विधि आती होगी, हम न्यारे हो जाएंगे, शरीर की कोई भी भोगना हमें कष्ट नहीं देगी। यही बाबा भी हम बच्चों को चाहता है, क्योंकि देह का पेपर भी एक बहुत बड़ा पेपर है, बाबा ने कहा ये अंत समय में ना ये पेपर आएगा। तो अभी हम धीरे 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 जो बाबा कहता है सब समेटते चले, और ये शरीर है तो हम योग तो कर ही रहे हैं, ज्ञान सुनते हैं, धारणा में हैं, सेवा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाबा ये कहता है ये जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों की भी तुम्हें बहुत सेवा करनी है, क्योंकि इन तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, और ये शरीर ही हमें अंत समय भिन्न भिन्न नाम रूप में भले मिलता है, सतयुग के आदि से कलयुग अंत तक 84 शरीर मिले हैं, सबसे निकट का साथी है ये आत्मा का, 5 तत्वों का बना हुआ, तो इसीलिए इन 5 तत्व जो हैं, इन 5 तत्वों को भी तुम्हें सत्वप्रधान बनाना है, और इसीलिए ये अब हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि अंत मते सो गते, अंत में अगर इन तत्वों के कारण ही प्राकृतिक, बाबा ने बताया प्राकृतिक आपदाएं आएंगी बहुत, कहीं अर्थक्वेक होगी, फ्लड होगा, ये जो 5 तत्व हैं ये अपना बहुत ऐसा रूप दिखाएंगे हलचल वाला, लेकिन बाहर जो है अति हलचल हो और अंदर हम अति अचल रहे, और वो कब रह सकेंगे, बाबा ने बताया जो तत्व है ना 5 तत्व, ये तत्व आपका अंत तक साथ दे। कैसे साथ देंगे, भूचाल हो रहा है, धरती हिल रही है, चारों तरफ बिल्डिंग गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, कैसे हमारा साथ देंगे वो? बाबा ने कहा है कि इन तत्वों को भी ना आप अपना मित्र बना लो। तत्व जो है हमारी मृत्यु का कारण न बने, तत्व जो है हमें कर्मातीत स्थिति प्राप्त कराने का साधन बने। कैसे बनेंगे? जब इनको हम मित्र बना लेंगे। मित्र का भाव यह है, मित्रता किनके बीच में होती है? जिनके संस्कार लगभग एक जैसे होते हैं उनके बीच में मित्रता होती है। आप देखते हो क्लास होती है, मुरली की क्लास, सब बाबा की मुरली वही सुनते हैं, फिर भी जाते जाते घर जाते जाते आपस में दो दो चार चार कोई बात करेंगे। जिनमें ज्यादा निकटता होगी आपस में, वो आपस में कुछ बात वगैरह करके क्लास से पूरा करते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके संस्कारों में निकटता है। ऐसे हम अपने संस्कार एक एक तत्व के संस्कार से मिलाते चले तो ये तत्व हमारे मित्र बन जाएंगे। और मित्र जो है कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, कष्ट नहीं देता। मित्र जो है समय पर मित्र की सहायता करता है। तो इसका भाव क्या है, कैसे हम उन्हें मित्र बनाएंगे? मानो जल है, हाँ, जल को हम अपना मित्र बना ले। बाबा ने कहा अंत में जल तत्व चारों तरफ फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, सुनामी आएगी। समुद्र का देखा ना, कितने जरा से क्षणों में ही लाखों आत्माओं को अपने अंदर ले लिया। लेकिन जल को अगर हम मित्र बना ले, हाँ, जल का क्या संस्कार है, मुख्य संस्कार क्या है, जल का मुख्य गुण क्या है? शीतलता। और जल का एक गुण है कि जल को जिस चीज में लो वैसा रूप धारण कर लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अभी जल को गिलास में लिया हुआ है, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, थाली में लो थाली में फैल जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में, फ्लेक्सिबिलिटी। जल अपने को एडजस्ट कर लेता है परिस्थिति के अनुरूप। ऐसे अगर हमने भी अपना ये गुण धारण किया होगा कि किसी भी आत्मा के संपर्क में हम आए, हम उससे के अनुरूप अपने को एडजस्ट कर ले। ऐसा न कहें कि इस आत्मा के साथ तो मिलके चलना सहज है, इनके साथ मुश्किल है, इनके साथ मैं सेट नहीं हो सकता या सेट नहीं हो सकती। नहीं, जल हर चीज में सेट हो जाता है। ऐसे जल का ये गुण अगर हमने धारण किया होगा तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का या हमारे कष्ट का कारण नहीं बनेगा। जल हमें अंत तक सहयोग देगा। जल में और क्या गुण होता है? शीतलता का गुण, जैसा बताया। हमारा स्वभाव भी इतना शीतल रहे, अगर मानो किसी परिस्थिति के वश होके अगर क्रोध आया या कुछ गर्म हो गया स्वभाव भी, क्रोध आया या कुछ, फिर भी जल का ये गुण है, अग्नि से उतार के रख दो, अपने आप ही थोड़े समय में अपने स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे ही कोई अगर परिस्थिति आए भी, पहले तो हमारी स्थिति खराब ना हो। अगर मानो थोड़ा उस परिस्थिति के वश भी हो गए तो थोड़े समय के अंदर ही हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में फिर से स्थित हो जाए। जल हमेशा आगे बढ़ता रहता है, बहता है, बहता हुआ जल सदा शुद्ध माना जाता है। ऐसे ही हम सदा आगे बढ़ते रहे, और जल जहां रुक जाता है वहां क्या होता है? फिर मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो अगर मेरे अंदर भी ईर्ष्या और परचिंतन परनिंदा के ये अवगुण आते हैं, मक्खी मच्छर, समझना चाहिए कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रेस रुक गई है। एक ये हम देखते चले, तो ये जल का गुण हो गया। ऐसे पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? पृथ्वी का क्या गुण है? सहनशीलता। उससे भी बड़ा पृथ्वी का गुण है दातापन का। पृथ्वी सदा देती है, एक बीज बस पृथ्वी में बो दो पेड़ निकल आएगा, उसमें हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। दाता है, धरती से ही हमें सब कुछ मिलता है। ऐसी बाबा कहता है धरती की तरह अगर हम अपना ये गुण दातापन का धारण कर लें, हर आत्मा को कुछ न कुछ देते चले। हर आत्मा को देने का भाव कोई स्थूल दान की बात नहीं है। कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए, शांति, शुभ भावना, शुभकामना, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, आदर, सत्कार, स्नेह, उसे अपनेपन की भावना है। बस ये अगर देते चलेंगे तो धरती के अनुरूप हमने अपना ये संस्कार बना लिया, तो चाहे जितना भी धरती कंप आए, भूचाल आए, धरती हिले, चारों तरफ मकान चाहे गिर जाएंगे, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धरती तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया, और मित्र कभी मित्र के प्राणों को नहीं लेता, उसके प्राणों की रक्षा करता है। तो ये धरती की तरह सहनशीलता का गुण, एक एक तत्व के आप गुण निकालेंगे, उनके समान हम अपने संस्कारों को, गुणों को मैच करते चले। और क्या है, पवन का, वायु का क्या गुण होता है? वायु हर चीज को उड़ाती है। जो चीज हल्की होती है ना उड़ती है, जो भारी चीज होती है वो नीचे आती है। पवन वायु उड़ाते, तो बस गीत भी है ना हमारा, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ऐसे ही कोई परिस्थिति आए, परीक्षा आए, हम अपने को चेक करते चले, मैं भारी तो नहीं हो जाता। अब भारीपन का गुण यह है, धरती या तत्व या कोई भी आत्मा या कोई परिस्थितियां मुझे अपनी तरफ खींचेंगी, और मैं जितना हल्का होऊंगा उतना उड़ता रहूंगा, फर्श से न्यारा होके अर्श की तरफ चलते रहेंगे। तो ये जो जैसे वो वायु होती है प्राण वायु, उस वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं, ऐसे ही उमंग और उत्साह ये हमारे जीवन के, ब्राह्मण जीवन के प्राण वायु है। जीवन में सदा हम उमंग उत्साह खुशी में रहेंगे तो चाहे जितने भी साइक्लोन आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, हवा जो है भले 200-250 किलोमीटर की स्पीड से बहेगी, बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम जो है उन परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि वायु तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया। तो ये वायु हमारे प्राण लेने के लिए निमित्त नहीं बनेगी, ये हमारी प्राणों की रक्षा के निमित्त बनेगी। इसी प्रकार से अग्नि तत्व का क्या गुण होता है, आपको बताया ना ज्वालामुखी योग में, अग्नि जो है रूप परिवर्तन कर देती है। वही बाबा चाहता है अब हमारा ऐसा ज्वालामुखी योग हो, हमारे नैन चैन जो बाबा चाहता है। अभी बाबा ने कल की उसमें भी बोला ना, तीन शब्द का भी निर्माण का बोला, तीन किस प्रकार से निर्माण करना है, निर्माण स्थिति में रहना है, और बस निर्माण बनना है, निर्वाण धाम में जाना है। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारी स्थिति रहेगी, जो आत्माएं आएंगी वो भक्त महसूस करेंगे उनकी इच्छाएं पूर्ण हो रही है। देखो ब्रह्मा बाबा किसकी आत्मा, किसकी आत्मा है ब्रह्मा बाबा? श्री कृष्ण की, नारायण की। हम सबने सुना है जब बाबा भी जब ज्ञान हुआ, भट्टी बनी, दादियां जब ये सब ज्ञान में आए, सबको ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार, नई दुनिया का, स्वर्ग का रास कर रहे हैं, बस वही सब साक्षात्कार होते थे, सब उसी में मगन रहते थे। लेकिन साक्षात्कार कराने की चाबी किसके पास है? शिव बाबा के पास, वो और किसी के पास नहीं है। तो हम सब ने सुना है, आपने भी यज्ञ की हिस्ट्री में सुना होगा कि एक परिवार आता था सरदार जी का, तो वो सरदार जी नहीं आते थे, वो ज्ञान के विरोधी थे। तो जब उन्हें ये हुआ कि परिवार वाले जाते हैं और धारणाओं की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा को मार दूंगा छुरे से। तो एक बार वो अपनी इच्छा ये लेकर, सोच करके छुरी लेकर के गया छुरा, और जाके बोला मुझे बाबा से मिलना है, बड़े प्रेम भाव से जैसे कोई भक्त आया हो। तो बहने ले गए, बाबा के कमरे में बैठा दिया, बाबा से परिचय करा के, और बहने चली गई, और जब उसने देखा अकेला है तो उसने छुरा निकाला और बाबा पर वार करने वाला था। तो क्या हुआ, सबने जीवन कहानी में पढ़ा है ना, उसे साक्षात्कार हुआ। उसे बाबा की जगह कौन दिखाई पड़ा? गुरु नानक देव जी। अब बाबा कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा है नहीं, गुरु नानक देव का साक्षात्कार उसे क्यों, क्योंकि उसकी भावना गुरु नानक देव में थी। तो शिव बाबा ने उसको गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया और जैसे उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ बस उसकी आंखों से तो अश्रु धारा बहने लगी और बस इतना पश्चाताप करने लगे, अरे मैं क्या करने चला था, ओहो गुरुजी मैं तो आपकी हत्या करने चला था, कितना बड़ा पापी हूं मैं, और बस बहुत रोने लगा। छुरी बाबा के चरणों में रख दी क्योंकि उसे तो गुरु नानक देव जी दिख रहे थे उसमें, और उसके बाद वो माफी मांग करके जैसे वहां से चला गया। अंत में यही पार्ट हम सबके द्वारा बाबा को, हमारी सब भक्त आत्माएं जितने हैं उन सब को कराना है। अनेक आत्मा आएंगी, कोई राम के साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी, राम का भक्त होगा, कोई हनुमान का भक्त होगा, कोई देवी का भक्त होगा, हम तो एक ही हैं, लेकिन हमारे द्वारा जैसी जिसकी इच्छा होगी उसे वैसा साक्षात्कार होगा, बाबा कराएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके इष्ट देव हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप जब उसे साक्षात्कार होगा तभी द्वापर युग से वो आत्मा हमारी मूर्तियां बना करके हमारे मंदिरों में हमारे सामने भक्त के रूप में अनेकानेक इच्छाओं की कामना करेगी। लेकिन वो तब होगा जब यहां पर हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे, और उसकी इच्छाओं को तभी पूर्ण कर सकेंगे, शिव बाबा तभी हमारे द्वारा उसकी इच्छाओं को पूर्ण कराएगा जब हमारा ये तन और मन हमने पवित्र रख के बाबा की सेवा में अर्पण किया हुआ होगा। तो ये जो है ये बाबा कहता है अग्नि का स्वरूप, और जब अगर हमने ऐसा स्वरूप धारण किया हुआ होगा तो अंत में चाहे जितना सूर्य की गर्मी हो जाए, 45, 50, 55 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए, कुछ भी हो, बहुत अति गर्मी भी होगी तो भी हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस अग्नि तत्व को भी हमने अपना मित्र बना लिया, और ये अग्नि तत्व जो है अंत में हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। प्रकृति की ये तत्व अंत तक तभी साथ देंगे जब हम यहां पर उनके अनुरूप अपने गुणों को बनाएंगे, अपने संस्कारों को। ऐसे ही आकाश तत्व, उसका क्या गुण है, कितना विशाल है आकाश। बाबा भी कहता है इतनी विशालता को धारण करो, किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को अपने अंदर धारण ही ना करो, हर एक के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहे। आकाश तत्व की विशेषता यह है, आज हर एक के हाथ में मोबाइल दिखता है, टीवी है, टेलीफोन है, कोई रेडियो है, क्यों? कम्युनिकेशन संसार, एक सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में ऐसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं वैज्ञानिकों ने, उसके मदद से हम कहीं पर भी हर आत्मा के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक हमारा कम्युनिकेशन, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका रूप। ऐसे ही हमें ये देखना है हमारे हृदय में इतनी विशालता हो कि हमारा किसी भी आत्मा से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा से हरेक को ये लगता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है इतना प्यार और किसी को नहीं करता, बस बाबा को कितना प्यार है। ऐसे ही हमारे द्वारा हर आत्मा को ये भासना आनी चाहिए कि ये मेरे इष्ट देव है और इन्हीं के द्वारा ही मेरी इच्छाएं हैं, वो उन्हीं के द्वारा मुझे तृप्ति मिलनी है। और वो तभी होगा जब हमारे मन में हर आत्मा के लिए प्रेम भाव होगा और दूसरा हर आत्मा से कम्युनिकेशन होगा। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं उनसे तो हम बात करते हैं घुल मिल करके, और जिनसे हमारे संबंधों में कहीं भी थोड़ी कटुता होगी, अगर सामने से भी आ रहा होगा, नजर बचा के हम निकल जाते हैं, बात नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते। ये इस बात को शो करता है कि हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति नहीं है। क्षमा की आज जितने भी महान आत्माएं हुई हैं उनमें सबसे बड़े से बड़ा गुण था क्षमा करने का, और क्षमा वही कर सकता है जिसने दूसरे की कमजोरियों को नहीं देखा होगा। हर एक आत्मा को बाबा ने कहा जब हम केवल वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं हर आत्मा को तो हमें उसकी कमी कमजोरी दिखती है, लेकिन जब हम किसी भी आत्मा को तीनों कालों की दृष्टि से देखते हैं कि आज भले इस समय ये कमजोरी का पार्ट बजा रहा है, लेकिन ये वही आत्मा है जिसे भगवान ने चुना है। बाबा ने कहा मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी, जो दुनिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इस समय के बड़े से बड़ा है, उससे भी वो महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो अपने को ये नशा रहना चाहिए कि मैं भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं, और भगवान की ये सभी आत्माएं चुनी हुई है। किसी में अगर कभी हमें कोई कमजोरी का पार्ट भी दिख रहा है, हम केवल वर्तमान के दृष्टि से ना देखें उसे, तीनों कालों की ये वही आत्मा है जो कल्प 5000 वर्ष पहले ये सतयुग के आदि में ये डबल ताजधारी, ये ऐसे आत्मा जो बाबा ने बताया है, और अंत में यही आत्मा फरिश्ता स्वरूप। हम जब तीनों कालों की दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी आत्मा में वो कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, और साथ ही साथ ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। समय पर फिल्म में भी हरेक एक्टर हरेक पार्ट थोड़ी बजाता है, जिस समय जिस एक्टर का जो पार्ट नूंदा हुआ है उस समय वो ही बजाता है। तो इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी इतनी महान दृष्टि अगर होगी तो क्या होगा, बस ये परिवार फैमिली हमें अपनी लगेगी। फंक्शन तो कर लिए वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, लेकिन वास्तव में अब हमारे अंदर ये आना चाहिए कि वास्तव में हम सब एक ही परिवार के अंश हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा है ये परिवार का पेपर भी एक बहुत बड़ा पेपर है। इन्हीं आत्माओं के साथ ही सबके साथ हमें सतयुग के आदि से अंत तक रहना है। इसीलिए किसी भी आत्मा के प्रति अगर थोड़ी भी निगेटिविटी आए, कोई भी ऐसा भाव आए, उसे तुरंत ही खत्म करके ये नहीं, बाबा ने चुना है, बाबा की चुनी हुई आत्मा है, और इस कारण से। और इसके लिए अंत में बस बाबा की एक बात के साथ मैं समाप्त करूंगा कि बाबा के अंत तक भी एक बात सदा रहती थी, जो बाबा ने कहा है ना, हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, मालूम है ना आप सबको, हर एक को 3 सर्टिफिकेट। कौन से हैं? प्रभु पसंद और मन पसंद और जग पसंद। तो लक्ष्य हमारा ये रहे जैसे मुझे ये तीनों सर्टिफिकेट लेके जाने, और बाबा के भी एक एक एक्टिविटी में ये रिफ्लेक्ट होता था। तो प्रभु पसंद के लिए कौन सी बात एक ध्यान में रखें? सिर्फ एक बात, बस भगवान जो है बाबा, हाँ क्या है बाबा के लिए गायन, किस पर राजी होता है भगवान? सच्चे दिल पर साहब राजी। बस हम अपना दिल सदा सच्चा रखें, साफ रखें, तो भगवान बंधा हुआ है हमारे ऊपर राजी होने के लिए। और उसकी पहचान क्या है? हमारा सच्चा दिल है। हम कहें मेरा तो सच्चा दिल है, लेकिन सारे परिवार वाले मुझे नहीं पहचानते। पहचान क्या है उसकी? जो दूसरा स्लोगन है, सच तो बिठो नच, वो खुशी में नाचता रहेगा, वो खुशी रहेगी। तो एक तो ये, दूसरा सर्टिफिकेट मन पसंद। हमारा मन पसंद का हमें अपनी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? अपने से ही, कि हाँ अब मैं माला की दाना के मण का बन रहा हूं, जरूर मैं माला में आऊंगा। कब हमारा अपना मन गवाही देगा? कब देगा मन हमारा? कब गवाही नहीं देता? जब कोई भी हम गलत काम करते हैं, कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है, भले किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारा मन के अंदर कचोटता रहता है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा का उल्लंघन हुआ ना। तो इसीलिए हम अपने को ये चेक करते चले कि मेरे द्वारा कोई भी मर्यादा का उल्लंघन कभी ना हो। यह है मन पसंद का सर्टिफिकेट। और तीसरा जग पसंद का सर्टिफिकेट क्या है? लौकिक दुनिया में भी कौन किसको ज्यादा रिगार्ड देते हैं, पसंद करते हैं? जिसका सबके साथ स्नेह होता है, रिस्पेक्ट। हर मनुष्य आज आदर चाहता है, मान चाहता है। बस कोई ज्ञान में हो ना हो, लौकिक हो अलौकिक हो, परिवार वाला हो पड़ोसी हो कोई हो, हम सबको आदर के साथ रिस्पेक्ट के देते हुए चलते चलेंगे, भले वो ज्ञान में आए ना आए, लेकिन उसके मुंह से ये जरूर निकलेगा, ये बहुत अच्छे आदमी है, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है और उसके आदर के पात्र बन जाएंगे और उसके द्वारा भी हमें सर्टिफिकेट मिलता चला जाएगा। तो अंत में आज हम यही सब संकल्प करें कि हाँ, बाबा के कदम पर कदम रखते हुए भी हम सभी जो बाबा ने कहा है उन बातों को और इसी बात को देखते हुए बाबा अंत समय में ना कैसे कर्मातीत हो गया, न्यारा हो गया, और हमें भी अब बाबा की तरह न्यारा और प्यारा बनके अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
आपकी याद बाबा रह रह के आए।